ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है, पश्चिम एशियाई देशों के साथ भारत के मजबूत संबंधों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर स्वर्ण सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं पत्रकार संजय झा।
भारत और पश्चिम एशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं, जो व्यापार, संस्कृति और साझा इतिहास में निहित हैं। हमारे देश की आजादी के बाद से ही इन संबंधों ने एक महत्वपूर्ण परिवर्तन देखा है, जो बदलते वैश्विक परिदृश्य और दोनों क्षेत्रों की उभरती आवश्यकताओं पर आकार लेता है। आज भारत पश्चिम एशिया साझेदारी एक बहुआयामी संबंध के रूप में उभरी है, जिसमें आर्थिक सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा, राजनीतिक समझ, रणनीतिक साझेदारी, समुद्री सहयोग, जन और जो पब्लिक टू पब्लिक कॉन्टैक्ट्स हैं। और हमने प्रधानमंत्री मोदी जी के जो तीसरा टर्म है उसमें देखा कि एक खास जो है जोर दिया जा रहा है। जो अभी हमारे कतर के जो शेख आए थे, उसके पहले भी कई सारे जो है हमने देखा कि पारस्परिक तौर पर बैठकें हुई हैं। मैं इस परिचर्चा की शुरुआत प्रोफेसर साहब आपसे करना चाहूंगा कि हमारे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध तो काफी गहरे रहे हैं, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की से लेकर के, तो आज के समय में हमारी जो संबंध है एक पश्चिम एशियाई देशों के साथ में, कैसे उसको आप देखते हैं?
संजय जी, धन्यवाद अपने कार्यक्रम में जोड़ने के लिए। और आपने बहुत अच्छी शुरुआत की कि इतिहास के नजरिए से देखें या सभ्यताओं के नजरिए से देखें, ठीक उसी वजह से भारत इसको पश्चिम एशिया कहता है बजाय कि मिडल ईस्ट कहने के, जो लगता है कि यूरोपीय देशों का दिया हुआ एक नामकरण है। तो सभ्यताओं का प्राचीन समय से जो आपस में आदान प्रदान था, तालमेल था, हमने वहां से क्या सीखा, उन्होंने हमसे क्या सीखा, तो उसके नजरिए से इसे हम पश्चिमी एशिया कहते हैं। और वो चाहे मैथमेटिक्स के क्षेत्र में हो या फिर आप देखें सीरिया में 1500 साल पहले संस्कृत की लिपियां मिलती हैं, तो इस तरह का जो ऐतिहासिक प्राचीन समय से आदान प्रदान था उसी के नजरिए से भारत इस पूरे क्षेत्र को आप देखें कि पश्चिम एशिया के नजरिए से देखता है। हालांकि विदेश मंत्रालय में इसको माना का नाम दिया जाता है, एक तरह से वो अलग है, उसका नजरिया जो शायद एक तरह से यूरोपीय सोच की कंटिन्यूएशन है नॉर्थ अफ्रीका और मिडल ईस्ट को जोड़कर देखने की, और गल्फ देशों के साथ बड़ा अच्छे संबंध हमेशा से रहे हैं। तो ये अच्छी शुरुआत आपने की कि हमारे जो संबंध यहाँ की सभ्यताओं से हैं वो बिल्कुल प्राचीन काल से हैं, और मुझे लगता है वो भारत के रिश्ते को इन सभी देशों से आज बहुत अलग एक तरह से आधार देता है।
हमारे साथ इस परिचर्चा में तो वरिष्ठ राजनयिक जो रिटायर्ड एम्बेसडर अशोक सन्हा जी भी हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं सर कि भारत और पश्चिम एशिया के बीच में आर्थिक साझेदारी का एक काफी महत्वपूर्ण चालक रहा है। पश्चिम एशिया जो भारत की आर्थिक वृद्धि का एक बहुत महत्वपूर्ण चालक रहा, इस क्षेत्र में देश विशेषकर खाड़ी सहयोग देश जिसको जीसीसी के नाम से हम जानते हैं के सदस्य भारत के प्रमुख ऊर्जा आपूर्ति करता है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा सऊदी अरब, यूएई, कतर, इराक और कुवैत जैसे देशों से आयात करता है। हालांकि ऊर्जा सहयोग केवल हाइड्रोकार्बन व्यापार तक सीमित नहीं है, भारत और पश्चिम एशिया दोनों ही नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश कर रहे हैं और सौर, पवन और हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं पर सहयोग कर रहे हैं। तो आप आर्थिक संबंध कैसे देखते हैं? आपने इतने समय राजनयिक सेवा में गुजारे हैं तो आपने देखा होगा कि कैसे उभरता हुआ मजबूत संबंध भारत का पश्चिम एशिया के देशों के साथ कैसा उभर रहा है।
आपने बिल्कुल ठीक कहा है, जो हमारे एक तो प्रोफेसर स्वर्ण सिंह ने कहा, मैं उनसे भी पूरी तरीके से सहमत हूँ, जो हमारे संबंध हैं बहुत ही ऐतिहासिक हैं, बहुत ही सांस्कृतिक हैं, और उनको फिर से अब एक नई जान दी जा रही है, नई दिशा दी जा रही है और नई ऊर्जा दी जा रही है। आपने जिक्र किया है जो भारत और पश्चिम एशिया के जो देश हैं, और स्पेसिफिकली आपने गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का जिक्र किया है जो उनके साथ हमारे ऊर्जा के संबंध रहे हैं और बहुत पहले से रहे हैं। परंतु देखिए, पहले थे ऊर्जा हम वहां पर, क्योंकि भारत को ऊर्जा की बहुत आवश्यकता है, भारत की आर्थिक व्यवस्था जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। आजकल तो हम विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, पिछले 10 साल में, 10 साल पहले हम करीब 10वीं थे, अब 5वीं बन गए हैं, और बहुत ही शीघ्र हम 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन जाएंगे। और इसके साथ साथ भारत पूरे विश्व में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ, इसकी अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ती हुई मेजर इकोनॉमी के उसमें शामिल है। तो हमारी ऊर्जा की जो जरूरतें हैं वो तो बढ़ती ही जा रही हैं, और भारत के पास ऊर्जा, चाहे तेल हो, गैस हो, या आपने रिन्यूएबल्स का भी नाम लिया, जिक्र किया, वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु बनकर उभरा है, भारत और पश्चिम एशिया के सहयोग में, परंतु मैं कहूंगा उसके साथ साथ आजकल के अगर हम देखें परिप्रेक्ष्य में तो बहुत ज्यादा हमारे संबंध और बृहद हो गए हैं और गहरे हो गए हैं, क्योंकि इसके बारे में हम और बात करेंगे जो हमारे वहां पर करीब 80-90 लाख लोग रहते हैं, परंतु जो वो अपना वहां पर कमाते हैं वो रेमिटेंसेस जो भेजते हैं भारत में वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको मीट करने में उनका बहुत ही बड़ा योगदान रहता है। उसके अलावा हम देखें जो वहां से हमारे व्यापार होता है, यूनाइटेड अरब एमिरेट संजय जी हमारा तीसरा सबसे बड़ा आर्थिक व्यापारिक सहयोगी बनकर उभरा है। अमेरिका पहले नंबर पर है और चीन दूसरे नंबर पर है और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स तीसरे नंबर पर है। यूएई भी अब अगर उसको देखा जाए तो विश्व में दूसरा सबसे बड़ा ऐसा देश है जहां पर हमारा निर्यात सबसे बड़ा होता है। अमेरिका में करीब हम जिसे कहें एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पदार्थों का करीब 70-80 बिलियन डॉलर अगर एक्सपोर्ट होता है तो यहाँ पर करीब 32 बिलियन डॉलर हमारा एक्सपोर्ट होता है। तो एक तो व्यापार के हिसाब से देखा जाए, दूसरा निवेश के हिसाब से देखा जाए तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक और बात मैं कह दूं, यूएई के बाद चौथे नंबर पर विश्व में सऊदी अरेबिया आता है। ऊर्जा के बारे में मैं और बता दूं, जो यहाँ पर अभी जब अमीर कतर के आए थे, हमारी जितनी भी पूरे विश्व से हम अपना एलपीजी और एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस खरीदते हैं, उसके अलावा पेट्रोकेमिकल्स केमिकल्स खरीदते हैं, तो करीब 40% जो हमारा आयात होता है उसकी आपूर्ति कतर से होती है। और अगर तेल की बात कर दी जाए तो हम करीब 50% से ऊपर तेल की जो हमारी आपूर्ति होती है, आपके सभी सुनने वालों को ये मालूम होगा जो करीब 85-90% तक हमारी जो तेल की जरूरत होती है उसको हम आयात करते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत कमी है फॉसिल फ्यूल्स की, और ये यहाँ से पश्चिम एशिया के देशों से बहुत कुछ आता है। तो मैं कहूंगा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, रेमिटेंसेस, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। निवेश जो है ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने कहा है जो वो 75 बिलियन डॉलर हमारे यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, निवेश करेंगे, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हाउसिंग हो, रोड प्रोजेक्ट्स हो, पोर्ट प्रोजेक्ट्स हो। अभी जो अमीर आए हैं कतर के, उन्होंने कहा है जो 10 बिलियन डॉलर वो यहाँ पर निवेश करेंगे। उनके साथ द्विपक्षीय व्यापार अभी वो 14 बिलियन डॉलर है, उन्होंने कहा है 2030 तक इसको 28 बिलियन डॉलर कर दिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ जो आर्थिक क्षेत्र, ऊर्जा का क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत जब चाहता है जो 2047 में हम विकसित भारत बने, तो उस दिशा पर हमें चलते हुए हमारे जो संबंध और सहयोग है पश्चिम एशिया के देशों से, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। संजय जी,
बिल्कुल, आपने काफी प्रकाश डाला हमारे संबंधों के बारे में। प्रोफेसर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, चूंकि आप इस विषय के एक बहुत ज्ञाता हैं और आपने पूरी जो भारत के जो संबंध हैं इन देशों के साथ उस पर काफी पैनी निगाहें रखी हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो तृतीय कार्यकाल है, इस दौरान हमने देखा कि जो विशेष रूप से खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य देशों और इजराइल के साथ भारत के संबंधों में पिछले दो कार्यकालों के दौरान काफी महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिला है, और इसमें लोग कहते हैं कि इनकी व्यक्तिगत जो कूटनीति है वो भी कभी शामिल है और उससे संबंध को बदलने में अत्यधिक योगदान दिया। हमने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए कतर के जो शेख हैं, अमीर हैं, उनको रिसीव करने के एयरपोर्ट पे खुद चले गए। प्रधानमंत्री मोदी जी की जो मध्यपूर्ण नीति जो है, उनकी विदेश नीति की एक सफल जो चीजें हैं सफलता की, उसमें से एक खास है। आप कैसे देखते हैं इस जो संबंध है मोदी जी के कार्यकाल में, कितनी इजाफा हुआ है इसमें?
प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल में या कुछ हद तक दूसरे कार्यकाल में भी बड़ी खूबसूरती से एम्बेसडर सजनहार ने बताया कि किस तरह से व्यापार, निवेश, रेमिटेंसेस की एक तरह से पुल का एक तरह से योगदान करते हैं भारत के रिश्तों में। अब प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में इन सब जो स्तंभ हैं रिश्तों के, क्या बदलाव आया है, वो दिलचस्प बात है। सबसे पहले तो हम हमेशा बात करते हैं ऊर्जा की, जो निर्भरता भारत की है इन सब देशों से। अब देखें कि पर्यावरण में बदलाव की जो नीतियां हैं उसके चलते एक तरह से पूरा विश्व सोच रहा है कि ग्रीन एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन करने की जरूरत है, और ये सभी देश फॉसिल फ्यूल्स पर एक तरह से निर्भर रहते हैं, उसी के निर्यात पर निर्भर रहते हैं। अब इनकी तलाश है कि वो जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स हैं उनकी तरफ किस तरह से रुझान बनाया जाए, तो भारत उसमें सोलर हो, विंड हो और दूसरी तरह के रिन्यूएबल एनर्जी के जनरेशन के लिए हिस्सेदारी अच्छे से बना सकता है। और उसमें आपको याद होगा कि 2023 में एक ग्लोबल कोएलिशन ऑफ बायोफ्यूल्स भी प्रधानमंत्री ने शुरू किया था। ठीक उसी तरह से जो व्यापार और निवेश की बात है, वहां भी अभी भी कुछ देशों के साथ भारत की जो व्यापार है वो एक तरफा रहता है कि हम केवल बहुत सा आयात करते हैं पर निर्यात बहुत ज्यादा नहीं होता है। कतर की भी उसमें बात ले सकते हैं, ज्यादा बड़ा सोर्स है भारत के लिए एलपीजी एलएनजी के लिए। तो अब लगातार कोशिश है कि किस तरह से व्यापार में, आयात में, निर्यात में संतुलन लाया जाए, और बहुत से देशों से अब ये संतुलन सामने नजर भी आता है। बड़े तौर पे यदि आप पश्चिमी एशिया पूरे क्षेत्र को देखते हैं तो आज भारत का व्यापार काफी हद तक संतुलित होता हुआ नजर आता है, करीब 180 अरब डॉलर के आसपास है, जो कि अमेरिका के व्यापार इस क्षेत्र के साथ से ज्यादा है। क्योंकि हालांकि अमेरिका का जो ज्यादातर रिश्ते हैं वो रक्षा सुरक्षा को लेकर है, वो रक्षा के उपकरणों का निर्यात करते हैं, वो अलग है, तो उसमें भी बदलाव आया है। ठीक उसी तरह से भारतीय लोग जो वहां रहते हैं उसमें भी बदलाव आया है। क्या बदलाव आया है कि पहले हम सोचते थे कि ज्यादातर जो भारतीय वहां रहते हैं वो ब्लू कॉलर नौकरियां, उनको रोजगार मिलता है। धीरे धीरे उसमें बदलाव आया और बहुत से टॉप एंड जॉब्स जो हैं, जिनको व्हाइट कॉलर भी कहते हैं, उन नौकरियों में भी अब भारतीय लोग बहुत ज्यादा नजर आते हैं। तो ये सब सक्षम कैसे हुआ? आपने जैसे खुद कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का जो व्यक्तिगत तरीका है, सभी वहां के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, नेता हैं, उनसे व्यक्तिगत तौर पर परस्पर जो प्यार का रिश्ता, दोस्ती का रिश्ता वो हमेशा बनाने की कोशिश करते हैं, उसी का आज ये बड़ा खास नतीजा है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो थिंक वेस्ट पॉलिसी है उसके चलते आज भारत की हिस्सेदारी, साझेदारी, दोस्ती इजराइल के साथ भी है तो ईरान के साथ,
बिल्कुल
सऊदी अरब के साथ है तो यूएई के साथ भी है, इजिप्ट के साथ है तो कतर के साथ है। देश जो आपस में तनाव में रहते हैं वो सभी भारत को आज अपना हिस्सेदार, साझेदार, दोस्त मानते हैं। ठीक इसीलिए 2021 में जब जो बाइडन राष्ट्रपति थे उन्होंने एक दूसरा क्वाड क्वाड्रिलेटरल शुरू करना चाहा इस क्षेत्र के लिए, तो उन्होंने इसराइल को, यूएई को और यूएस के साथ भारत को जोड़ा, क्योंकि भारत सर्वसम्मति से एक तरह से दोस्ती बनाकर सभी देशों का साथ चलता है। हालांकि चीन का व्यापार इस क्षेत्र में 500 अरब डॉलर है और जो भारत की एक तरह से गुडविल है इन सब देशों में 180 अरब डॉलर के व्यापार के साथ, और उसमें छोटी सी बात समझना एक भी जरूरी होता है कि ये व्यापार 180 अरब डॉलर का और बढ़ सकता था, पर हाल ही में आपने देखा कि जो लगातार अस्थिरता बनी हुई है, खासकर इसराइल का आपने जिक्र किया, बहुत से वर्षों में इसराइल भारत का सबसे बड़ा स्रोत बना रक्षा उपकरणों के आयात के लिए, पर उसी इसराइल के साथ पिछले वर्ष 65% कम हुआ व्यापार, क्योंकि वहां लगातार युद्ध चल रहा था। ठीक उसी तरह से जॉर्डन के साथ कम हुआ, लेबनान के साथ कम हुआ, ये व्यापार कम होते हुए भी 180 अरब डॉलर तक टिका हुआ है, और इसको आगे ले जाने की, बढ़ाने की बहुत ज्यादा मुझे लगता है पॉसिबिलिटी है।
जी बिल्कुल प्रोफेसर साहब। एम्बेसडर साजना, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो भारत का जो पश्चिमी एशिया के देशों के साथ जो है रक्षा और सुरक्षा संबंध लगातार बढ़ रहा है, जिसमें काफी उच्च स्तरीय दौरे हमने देखे, द्विपक्षीय अभ्यास देखा हमने, जो मिलिट्री की एक्सरसाइज होती हैं उसके अंदर प्रशिक्षण और प्रदर्शनी भी शामिल है, आतंकवाद विरोधी, खुफिया जानकारी साझा करना, साइबर सुरक्षा और समुद्री सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में काफी हद तक जो सहयोग में विस्तार हो रहा है। हाल के दिनों में भारत और जो पश्चिमी एशिया के देशों में इस तरह के जो संबंध बढ़ रहे हैं, आपको लगता है कि पहले के मुकाबले जो पश्चिमी एशिया देश हैं इन चीजों में ज्यादा सहयोग कर रहे हैं एक दूसरे से?
संजय जी, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए, हम बात कर रहे हैं जो पहले भारत और पश्चिमी एशिया के देशों के मध्य कैसे केवल ऊर्जा के रिश्ते थे, उसके बाद ऊर्जा के बाद हमने देखा जो वहां पर आर्थिक संबंध भी और बहुत तेज हुए, और उसके साथ आयात, निर्यात, निवेश, और फिर अब देखिए जिसे कहा जाता है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, सामरिक हमारे जो संबंध हैं वो इन सब देशों के साथ बड़े अच्छे हुए हैं। और जैसा प्रोफेसर स्वरण सिंह बता रहे थे, इसमें प्रधानमंत्री मोदी का बहुत ही योगदान है, क्योंकि उन्होंने हर देश के साथ अपने संबंधों को, शीर्ष उनका नेतृत्व है, उनके साथ 1-to-1 पर्सनल रेपो एस्टेब्लिश किया है। प्रधानमंत्री मोदी जब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में अगस्त 2015 में उनकी पहली यात्रा थी वहां पर, तो ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में 34 साल बाद यात्रा थी। 2015 से लेकर अब तक 9-10 साल में प्रधानमंत्री मोदी वहां पर 7 बारी जा चुके हैं, तो कहां 34 साल में एक बारी नहीं जाना और कहां 10 साल में 7 बारी जाना। और यही चीज है हर एक देश के साथ, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, कुवैत हो, बहरीन हो, और इन सभी देशों के साथ हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एस्टेब्लिश की है। 6 सदस्य हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के, इसमें से 4 के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पहले साइन हो चुकी है, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कुवैत और ओमान, और अब ये 5वें मेंबर के साथ भी हो गई है, जो इस जीसीसी के मेंबर नहीं है उनके साथ भी हो चुकी है। तो सामरिक संबंध जो ऐसे हैं, बहुव्यापी संबंध हैं, क्योंकि पहले जो ये देश थे भारत की तरफ, वो देखते थे पाकिस्तान के नजरिए से, जो हमारे संबंध इस्लाम के कारण पाकिस्तान से बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान और भारत के संबंध अच्छे नहीं हैं, तो इसीलिए हमारे भारत के साथ संबंध ठीक नहीं होंगे। ये सारा जो समीकरण था संजय जी, ये प्रधानमंत्री मोदी ने आकर एकदम इसको बदल दिया है। और अब जैसे आप बता रहे हैं, जो हमारे आर्मी चीफ्स वहां पर विजिट कर रहे हैं, हमारे नेवल चीफ्स वहां विजिट कर रहे हैं, हमने ओमान में डुकम पोर्ट वहां से लिया है, जॉइंट एक्सरसाइजेस हो रही है हमारी, इंडो पैसिफिक जो स्ट्रेटजी है उसमें हम इनको इन्वॉल्व कर रहे हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग कैसे हो, आतंकवाद से कैसे लड़ा जाए, रिन्यूएबल एनर्जी पर हम कैसे काम करें। तो देखिए ये सभी जो क्षेत्र हैं, ये सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, ये सभी क्षेत्र जो है ये हमारे सामने आ गए हैं, जो कैसे हम इनके साथ मिलकर बातचीत कर सकते हैं। एक मैं और चीज बताना चाहूंगा संजय जी आपके श्रोताओं के लिए, और वो है आईमेक का महत्व। देखिए I2U2 का प्रोफेसर स्वरण सिंह ने बताया, बहुत ठीक बात है। उसके साथ साथ हमने जब व्यापार की बात करते हैं, तो भारत और UAE ने भी एक द्विपक्षीय व्यापार समझौता किया, और ये कहा जाता है 88 दिन में इस समझौते को पूरी तरीके से फाइनलाइज किया गया। UAE की जो मिनिस्टर हैं वो बता रही थी, जो देखिए भारत के साथ हमने अपना आर्थिक द्विपक्षीय समझौता 88 दिन में समाप्त किया, यूरोप के साथ हम यही बातचीत करते हैं पिछले 30 साल से चल रही है, पर उनके साथ हम समझौता नहीं कर पाए। तो देखिए कितनी तेजी से ये हमारे संबंध अग्रसर हो रहे हैं। परंतु मैं बताना चाहता था इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, मेरे ख्याल से ये एक सामरिक रूप से ये एक गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट है, इनिशिएटिव है। अभी प्रधानमंत्री गए थे वहां पर फ्रांस में, मार्सेई में राष्ट्रपति मैक्रोन भी थे, मार्सेई होने वाला है वहां पर एक छोर ये आईमेक का, ये आईमेक जाएगा, अमेरिका से आएगा और अटलांटिक ओशन से होते हुए यूरोप आएगा, यूरोप के थ्रू पश्चिमी एशिया के देशों से आता हुआ भारत में जाएगा, भारत से ट्राइलैटरल हाईवे होता हुआ ये जाएगा साउथ ईस्ट एशिया और फिर पैसिफिक। तो मतलब पूरे विश्व को ये मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जोड़ेगा, और इसका मैं समझता हूं जो प्रभाव है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आखिर में अब बात करेंगे चुनौतियां क्या है। पिछले 2 साल में जब से ये लॉन्च हुआ था 2023 में, तब से इसके ऊपर प्रगति हो रही है, परंतु इतनी ज्यादा नहीं हुई है क्योंकि वहां पर अशांति और अस्थिरता बनी हुई है, और इसको हमें आगे जाते हुए देखना होगा जो हम इसको कैसे पार कर सकते हैं।
बिल्कुल प्रोफेसर साहब, मैं आपसे लोगों के बीच के जो संबंध हैं भारत और पश्चिमी एशिया, खास करके हमारे वरिष्ठ राजनयिक चौक जी ने काफी अच्छे से बताया कि क्या क्या चीजें हो रही हैं कूटनीतिक तौर पर, जन जन के बीच जो संपर्क है उसमें हमारे जो पश्चिम एशिया के देशों में करीब 90 लाख भारतीय रहते हैं, जो प्रवासी भारतीय भी हैं, अप्रवासी भारतीय भी हैं, उसमें मेरा प्रवासी से है कि जो लोग काम करते हैं, अप्रवासी से मतलब है जो यहां से चले गए हैं वहीं रहते हैं पर भारतीय मूल के लोग हैं, तो उनका भी जो संबंध बढ़ाने में वहां के अर्थव्यवस्था के साथ साथ अपने भारत के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। ये जो जीसीसी देशों में जो प्रवासी भारतीय समुदाय है उनका हमारे दोनों देशों के बीच में संबंध बढ़ाने में काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उनकी जो समूह है इसको कितनी अहमियत देते हैं इस संबंध बढ़ाने में।
संजय जी आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया, जैसे एम्बेसडर सजनहर भी कह रहे थे कि एक पूरे अरसे तक पूरा ये क्षेत्र के जो राष्ट्राध्यक्ष थे, नेता थे, वो दक्षिण एशिया को पाकिस्तान के नजरिए से देखते थे, और उसमें आपने OIC का जिक्र किया, तो मैं भी एम्बेसडर सजनहार की तरह एक उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। OIC का गठन 1969 में हुआ था और रबात में मोरक्को में उसका अधिवेशन होना था। भारत से डेलीगेशन वहां गया था और आप ध्यान दें कि वो डेलीगेशन के नेता जो थे वो फखरुद्दीन अली अहमद थे, जो बाद में राष्ट्रपति बने भारत के, और पाकिस्तान से उसमें शिरकत करने शामिल होने जुल्फिकार अली भुट्टो गए थे। और क्योंकि उस वक्त ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान एक था, तो पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश था, तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा कि यदि भारतीय डेलीगेशन है उसको वापस नहीं भेजा गया तो वो इसमें शामिल ही नहीं होंगे, और यदि इतिहास गवाह है तो भारत के पूरे नेतृत्व को, फखरुद्दीन अली अहमद को भी वापस भारत लौटना पड़ा था 1969 में। अब आप आ जाएं 2019 में, 50वां उसका अधिवेशन होने वाला है। भारत से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को प्लेनरी सेशन में बोलने के लिए बुलाया गया। ठीक उस वक्त महमूद शाह कुरैशी पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं, वो कहते हैं कि उनको प्लेनरी सेशन में यदि बुलाया गया तो वो नहीं आएंगे। 2019 में OIC ने कहा कि ये आपकी मर्जी है कि आप आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं, हम अपने कार्यक्रम में बदलाव नहीं करेंगे। वही सुषमा स्वराज थी जिन्होंने भारत की विदेश नीति का ध्यान पूरी तरह से न केवल भारतीय नागरिक विश्व भर में बल्कि भारतीय मूल के जो लोग हैं विश्व भर में उनकी जो सहूलियत, उनकी सुरक्षा की जरूरतें हैं उस तरफ बिल्कुल बदलाव लाया। उसमें पूरा विदेश नीति जो है वो पूरी उस तरफ रुझान हो गया भारत की विदेश नीति का कि उनको लगातार जोड़ना है अपने देश के साथ। उसी का आज नतीजा है कि इतिहास में पहली बार ऐसा होता है कि भारत के या किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष, नेता, प्रधानमंत्री दूसरे देश में जब जाते हैं तो बहुत बड़ा जनसमूह उनके नाम का उच्चारण करके नारे लगाता है। ये कभी इतिहास में हुआ नहीं किसी का भी कि किसी एक राष्ट्र के नेता दूसरे राष्ट्र में आए और बहुत बड़ा समुदाय उनके नारे लगा रहा हो। तो ये उत्साह जो भारतीयों का है, भारतीय नागरिकों का, भारतीय मूल के जो लोग हैं दुनिया भर में, ठीक उसी तरह से पश्चिम एशिया में भी जो उनका उत्साह है भारत के प्रति जोड़ने की जो कोशिश है, अपनी जो आइडेंटिटी है वो उसको सेलिब्रेट करने की जो पूरा रुझान बना है, वो जन समुदाय पर क्या असर है भारत के प्रधानमंत्री का लगातार इन बड़े नेताओं से तालमेल बना के रखने का, ये उदाहरण मुझे लगता है बहुत अच्छे से हमें समझाती है कि क्यों इतना उत्साह अब नजर आता है। वो चाहे निवेश में हो, व्यापार में हो, जरूर उसका योगदान रहता है। यदि उत्साह से भारतीय लोग एक तरह से भारत के राजदूतों की तरह ही काम करते हैं वहां, तो रिश्तों पर जाहिर है कि उसका बहुत अच्छा असर पड़ता है।
एम्बेसडर साहब, हमने देखा कि लोगों के बीच में कैसे संबंध बढ़ रहे हैं, खास करके वो मोदी जी के मोदी एरा में इस पे काफी इजाफा हुआ है। आप जिस चीज के एक्सपर्ट हैं, आप राजनयिक तौर पे समुद्री सुरक्षा और सहयोग की बात पर मैं आपसे चाहता हूं कि कुछ हमारे श्रोताओं को आप बताएं कि भारत और पश्चिम एशिया के बीच जो समुद्री सहयोग हो रहे हैं वो हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। दोनों क्षेत्र हम अक्सर देखते हैं कि ये जो पायरेसी होती है, जो समुद्री डकैती होती है, आतंकवाद और अन्य गैर पारंपरिक खतरों का सामना करते हैं, और उसको लेकर के भारत और जो पश्चिम एशियाई देश हैं वो संयुक्त रूप से नौसैनिक अभ्यास करते हैं, समुद्री सुरक्षा में सहयोग करते हैं। हमने रेड सी में देखा था कि कितनी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं, विशेष करके जो हुती जो विद्रोही हैं उनके हमलों के कारण काफी समस्या बढ़ती जा रही है, समुद्री सहयोग के लिए का महत्व बढ़ता जा रहा है। तो इसमें भारत अपनी नौसेना की उपस्थिति को बढ़ा रहा है, जो खास करके जो एरिया है इसको आप कैसे देखते हैं कि हमारे दोनों देश पश्चिम एशिया के देशों में और भारत के बीच में क्या सहयोग की संभावनाएं हैं?
आपने बिल्कुल ठीक कहा संजय जी, मैं आपसे सहमत हूं। हमारे दोनों देशों के बीच में ये बहुत संभावनाएं हैं, बहुत अच्छा इसमें हम एक दूसरे के साथ सहयोग कर सकते हैं। हमने देखा है जो रेड सी का आपने जिक्र किया है, और जब से हमने देखा है अक्टूबर 2023 में जब ये युद्ध शुरू हुआ इजराइल और हमास का गाजा में, तो तब से हुतीज ने यहाँ पर यमन से बहुत ही अपने वार शुरू कर दिए हैं वहां पर, और जो सारी शिपिंग है उसको एकदम तहस नहस कर दिया। तो उसमें भारत वहां पर एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनकर उभरा है, बड़ी तेजी से उभरा है वहां पर, और उसने अपनी शिप्स वहां पर भेजी हैं, बहुत बेड़े वहां पर भेजे हैं, और इन सभी देशों के साथ मिलकर वहां पर शांति स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। दूसरा वहां पर जो पायरेसी होती है सोमालियन पोर्ट से, सोमालिया के जो पायरेट्स हैं उन्होंने वहां पर कुछ वर्ष पहले बहुत ही अशांति वहां पर पैदा कर दी थी, और उसमें भी भारत ने जाकर योगदान दिया है, वहां पर उनके विरुद्ध काम किया है, और ये सब जो देश हैं भारत की इससे कृतज्ञता मानते हैं। इनके साथ भी हम हिंद महासागर में और इंडो पैसिफिक में भी हम बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं और अपने दोनों संबंधों को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, भारत और फ्रांस, इनके बीच में ट्राइलैटरल हुआ है। हमारी वहां पर एक्सरसाइजेस, नेवल एक्सरसाइजेस होती हैं। जो आयोरा है उसमें वो बहुत ही तेजी से ये देश सम्मिलित हो रहे हैं। वहां पर ओमान में हमने एक पोर्ट लिया है डुकम, वहां पर हमारी बहुत सारी शिप्स की विजिट्स होती हैं संजय जी, जिससे कि भारत और इन देशों की नेवीज के बीच में सामंजस्य बैठे, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बढ़े, इंटर ऑपरेबिलिटी हो, और उससे दोनों ही भारत का और पश्चिम एशिया में शांति का और स्थायित्व का इसको बहुत फायदा मिलता है, और ये देश भी भारत की तरफ देख रहे हैं जो ये हमको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। भारत एक उभरती शक्ति है, न केवल अर्थव्यवस्था के तरीके से परंतु और तरीकों से भी बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति बनकर उभर रहा है, और इन सब देशों के साथ हमारे जो संबंध हैं ये विन विन सिचुएशन है, उन देशों के लिए भी फायदेमंद है और हमारे लिए भी बहुत ही लाभदायक है।
प्रोफेसर साहब, मैं एक छोटी सी टिप्पणी आपसे चाहूंगा कि हमने देखा कि हमारे जो भारत और पश्चिम एशिया के देशों के बीच में संबंध काफी सुधार हुए हैं और काफी संभावनाएं हैं, पर इन सब के बीच हमारे श्रोताओं को जो आने वाले समय में इन संबंधों में किस तरह की चुनौतियां हो सकती है, इस पर एक छोटी सी टिप्पणी आप बता सकें।
बिल्कुल, मैं समुद्री सुरक्षा से ही शुरू करूंगा इस पर भी, क्योंकि 2008 से शुरू हुआ था ये पूरा माहौल के पायरेसी बहुत बड़ी समस्या हो गई थी, और गल्फ ऑफ एडन से शुरू करके लगातार भारत की जो नौसेना है वो जुड़ी हुई है इस तरह के एंटी पायरेसी के प्रोग्राम्स के साथ, ऑपरेशंस के साथ, एक्सरसाइजेस के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ भी तालमेल बनता है उसको लेकर। और उसके अलावा मुझे लगता है यदि आप चुनौतियों की बात करते हैं इस क्षेत्र में, तो लगातार जो तनाव बना हुआ है और उसके खत्म होने का कोई अभी संकेत नहीं आता है, हमास और इसराइल का तो है ही, पर अब मुझे लगता है राष्ट्रपति ट्रंप के आने के बाद जो नया उत्साह प्रधानमंत्री नेतन्याहू में हम देखते हैं, तो इसराइल और ईरान का भी तनाव मुझे लगता है कि वो बनने जा रहा है। उसके अलावा सीरिया में यहाँ आपने देखा कि एक सत्ता खत्म हुई, दूसरी सत्ता आई है, पर क्या दूसरी सत्ता लोकतांत्रिक होगी, क्या उससे वहां संतुलन, समृद्धि, सुरक्षा आएगा या नहीं आएगा, वो अभी बिल्कुल साफ नहीं है। तो इस पूरे क्षेत्र में लगातार हौदीज की बात एम्बेसडर सजनहार ने अभी की, वो रेड सी में उनको लेकर चिंता है, तो ये जो युद्ध के बादल एक तरह से मंडराते हुए नजर आते हैं कि वो लगातार असंतुलन बना रहता है, अस्थिरता बनी रहती है, उससे सभी क्षेत्रों में जो अच्छा साझेदारी बनाने की कोशिश है भारत की, उस पर जाहिर है कि नकारात्मक उसका असर होता है, चाहे वो भविष्य को लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो, सेमीकंडक्टर्स की बात हो, उस क्षेत्र में इनसे तालमेल बनाने की बात हो, या ग्लोबल साउथ के नजरिए से इन देशों को अपने साथ जोड़ने की बात हो, सभी में मुझे लगता है अपने आप चुनौतियां आ जाती हैं जब युद्ध का एक तरह से पूरा माहौल उस क्षेत्र में बना रहता है। तो इस वक्त मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती यही है कि किस तरह से ये युद्ध का जो पूरा माहौल बना हुआ है उसको किस तरह से रोका जाए। हालांकि दूसरे युद्ध विराम की जो चर्चा है वो शुरू हुई है अभी हमस और इसराइल के साथ, पर लगातार जिस तरह से सीज फायर का उल्लंघन हुआ है खासकर इसराइल की तरफ से, तो उससे लगातार चिंता बनी रहती है कि क्या ये युद्ध विराम टिकेगा, उससे शांति बन पाएगी।
बिल्कुल, हमारे पास समय की कमी है, पर हम ये कह सकते हैं कि इन चुनौतियों के बावजूद भारत पश्चिम एशिया संबंधों का जो भविष्य है वो काफी उज्जवल है। दोनों जो क्षेत्र हैं वो आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं। भारत और पश्चिम एशिया के बीच जो साझेदारी है वो 21वीं सदी में दोनों क्षेत्रों के विकास और समृद्धि के लिए काफी महत्वपूर्ण होगी, और ये आवश्यक कि दोनों पक्ष इन संबंधों को और मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें, आपसी विश्वास और समझ को बढ़ावा दें। इसके लिए नियमित उच्च स्तरीय वार्ता, आर्थिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान और जनता से जनता के बीच जो संबंध है उसको बढ़ाने पर उनका ध्यान होना चाहिए। आपका इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे पश्चिम एशियाई देशों के साथ भारत के मजबूत संबंधों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर स्वर्ण सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे पत्रकार संजय झा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।